एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब तेरा ना हो कोई सहारा है एक ना जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा है एक ना जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू है एक ना जो होगा तेरा बल। यीशु नाम यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम यीशु Yeshua, Yeshua, जब अपनों ने छोड़ा तुझे है एक ना जो सीने से रखता तुझे जब तेरे शत्रु घेरे तुझे है एक ना बचाएगा जो तुझे सबने कहा होगा तेरा है एक ना जो कहता शुरू है अब यीशु नाम यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौका के लिए, हम तेरी उपासना करते हैं, हमें तेरा वचन से आशीषित कर, मेरे हर एक सुनने वालों के संग हो पिता, उनके दिलों में तू तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छू और उन्हें तेरा बहुतायत से आशीष दे, और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा मैं तेरा वचन को बतला सकूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आज हमारा पढ़ाई का शीर्षक है, क्या परमेश्वर निष्पक्ष हैं। शहर में एक लड़का परिवार की मेज पर अपना होमवर्क करते हुए आवारा गिरोह की गोली द्वारा मारा जाता है। उपनगर में एक युवा माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे को दूषित रक्त चढ़ाने के कारण एड्स हो गया है। इस संसार में त्रासदियाँ चलती रहती हैं और हम बहुत समय से इन चीज़ों का उत्तर जानना चाहते हैं। अर्थहीन पीड़ा और मृत्यु की दुनिया में परमेश्वर कहाँ हैं? भजनकार हमें आश्वासन देता है कि पृथ्वी परमेश्वर के अतः प्रेम से भरी है, भजन संहिता 33:5। लेकिन अगर यह सच है तो वे पीड़ा और त्रासदी का अंत क्यों नहीं करते? प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे और कब परमेश्वर पाप और पीड़ा का अंत करेंगे। 1000 साल का निरावरण। प्रकाशित वाक्य 20 मसीह के दूसरे आगमन के 1000 साल की अवधि के बारे में बताता है। इस 1000 वर्ष की अवधि के आसपास की घटनाएं मसीह और शैतान के बीच संघर्ष के अंतिम कार्य हैं, जो ब्राह्मण में पाप के प्रवेश करने के बाद से चल रहे हैं। यह नाटक स्वर्ग में शुरू हुआ जब लूसीफर मसीह से ईर्ष्या करने लगा था, स्वर्गदूतों के साथ युद्ध शुरू कर दिया था, निष्कासित कर दिया गया था और हमारी दुनिया में भाग आया। नाटक धरती पर अदन की बारी में जारी रहा, फिर सदियों तक चलता गया, जब तक कि यह अपनी पहली पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच गया, जब शैतान ने मानवता के प्रतीक मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आप मार्गदर्शिका 3 में इस दुख भरी कहानी को पढ़ सकते हैं। यह नाटक 1000 साल की अवधि के करीब अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, जब हमारी पापी दुनिया शुद्ध हो जाएगी और मसीह के नियंत्रण में आ जाएगी। प्रकाशित वाक्य 20 में हमें मिलता है कि 1000 साल की अवधि 2 पुनर्स्थानों से अलग होती है। पहले पुनर्स्थान में परमेश्वर मृतकों में से किसको उठाएंगे, जो 1000 साल की शुरुआत में होगा। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। धन्य और पवित्र वे हैं जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार किया है, पहले पुनरुत्थान में आते हैं। यदि धर्मी जन 1000 वर्षों के दौरान मसीह के साथ शासन करने के लिए हैं, तो उनका 1000 वर्षों की शुरुआत में पुनरुत्थान किया जाना चाहिए। 1000 साल की अवधि के अंत में दूसरे पुनरुत्थान में कौन उठाए जाएंगे? जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। प्रकाशित वाक्य 20:5। बाकी के मृत केवल मरे हुए दुष्कर्मियों को संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन जो धन्य और पवित्र हैं 1000 वर्षों की शुरुआत में पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। तो 1000 साल की अवधि 2 पुनरुत्थानों के द्वारा चिन्हित की जाती है। इसकी शुरुआत में धर्मियों का पुनरुत्थान और इसके खत्म होने के समय दुष्कर्मियों का पुनरुत्थान। मसीह के आने पर पुनरुत्थान, धर्मियों का पहला पुनरुत्थान मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। जब यीशु फिर से इस धरती पर आएंगे तो वह मसीह में मरे हुए लोगों को उठाएंगे और धर्मी जन लोगों के साथ उन्हें स्वर्ग में ले जाएंगे, क्योंकि दुष्कर्मी अभी भी पाप में लिप्त हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते हैं और वे मसीह के आगमन पर नष्ट हो जाएंगे। लूका 17:26-30। शैतान 1000 साल के लिए धरती पर जंजीर से बांधा गया। जब 1000 साल शुरू होंगे तो सभी धर्मी जन स्वर्ग में चले जाएंगे और सभी दुष्कर्मी मारे जाएंगे। 1000 वर्षों के दौरान इस दुनिया में क्या होगा? आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। यीशु के आने पर शैतान बांधा जाएगा और 1000 वर्षों के दौरान जंजीरों में बंधा रहेगा। शैतान कहाँ कैद है? रसातल में या अथाह कुंड में, जो कि एक यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ है बहुत गहरा या तलहीन। उत्पत्ति 1:2। पुराने नियम के ग्रीक संस्करण में सृजन के दिनों से पहले अपनी अविकसित स्थिति में पृथ्वी का वर्णन करने के लिए रसातल शब्द का उपयोग किया। तो हमारी पृथ्वी रसातल है जहां परमेश्वर ने शैतान को कैद किया है। पवित्र शास्त्र शैतान को एक महान जंजीर से बंधा हुआ वर्णित करता है। क्या यह एक शाब्दिक जंजीर है? नहीं, यह प्रतीकात्मक है, परिस्थितियों की एक जंजीर है। शैतान इन 1000 वर्षों के दौरान लोगों को धोखा देते रहना चाहता है, लेकिन वह परीक्षा में डालने के लिए किन्हीं धर्मी जन लोगों को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वे सभी स्वर्ग में हैं, और वह नेतृत्व करने के लिए किसी दुष्कर्मी को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वे सब मर चुके हैं, पृथ्वी की धूल में सो गए हैं। किसी को भी धोखा देने या लुभाने में असमर्थ, वह एक खाली दुनिया में घूमता है और अपने कारण होने वाले सभी दिल के दर्द और त्रासदी पर विचार करने के लिए मजबूर है। धर्मी जन दुष्कर्मियों का निर्णय करेंगे। 1000 साल की अवधि न्याय का भी समय है, लेकिन याद रखें कि निर्णय में 4 मुख्य चरण शामिल हैं। पहला, धर्मियों का मसीह के दूसरे आगमन से पूर्व निर्णय। दूसरा, धर्मियों का यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर पुरस्कार मिलना। तीसरा, 1000 वर्षों के दौरान कुकर्मियों का निर्णय। चौथा, उस अवधि के अंत में शैतान और दुष्कर्मियों को पुरस्कार या दंड। अब हम दुष्टों की जांच और उनके पुरस्कार चरण 3 और 4 में देखेंगे। हमने देखा है कि मरे हुए धर्मियों को पुनर्जीवित किया गया है और जीवित धर्मियों को मसीह के दूसरे आगमन पर एक साथ स्वर्ग में ले जाया गया है। वे 1000 वर्षों के दौरान स्वर्ग में आराम से रह रहे होंगे। वे क्या कर रहे होंगे? क्या आप नहीं जानते हैं कि संत जो बचाए हुए होंगे दुनिया का निर्णय करेंगे? क्या आप नहीं जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों का निर्णय करेंगे? यह हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:2-3 में, और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:4। यहाँ लिखा है, मैंने एक सिंहासन को देखा जिस पर उनको बैठे देखा जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। वे जीवन में आए और मसीह के साथ 1000 साल राज करते रहे। 1000 वर्ष के दौरान धर्मी जन दुष्कर्मियों और गिरे हुए स्वर्गदूतों के मामलों की समीक्षा करेंगे, जिनमें उनका नेता शैतान भी शामिल है। मसीह के शहीदों, विजेताओं तथा युद्ध में घायल अनुयायियों के लिए परमेश्वर के दुष्टों के बारे में किए गए निर्णय का परीक्षण करना व उसे समझना कितना उपयुक्त है। परमेश्वर ने कृपापूर्वक मनुष्यों को दुष्कर्मियों के साथ अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने का मौका दिया है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मेरी आंटी यहाँ क्यों नहीं है, वह बहुत अच्छी व्यक्ति थी। जब हम आंकड़ों पर जाते हैं और पुस्तकों के किए गए उल्लेख के अनुसार मृतकों के कामों के आधार पर उनके बारे में निर्णय लेते हैं, हम स्वयं के लिए देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ उनके सभी व्यवहारों में हर किसी के साथ न्यायसंगत और निष्पक्ष रहे हैं। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के समक्ष समर्पित होने के लिए बार बार लोगों को मौका दिया और प्रत्येक निर्णय की निष्पक्षता स्पष्ट हो जाएगी। जब 1000 साल का अंत होगा तब शैतान की जंजीरों को खोला जाएगा। 1000 साल की समाप्ति के समय बाइबल घोषणा करती है, मैंने पवित्र शहर नया यरूशलेम देखा जो परमेश्वर के स्वर्ग से बाहर आकर नीचे उतर रहा था, जिसे उस दुल्हन के रूप में सजाया गया था जो अपने पति के लिए खूबसूरती से तैयार होती है। प्रकाशित वाक्य 21:2। अपवित्र शहर मसीह और उन सभी लोगों के साथ जिन्हें अंदर से मुक्ति दी गई है स्वर्ग से हमारी दुनिया में उतरते हैं। शैतान 1000 सालों के अंत में क्या करेगा? जब 1000 साल समाप्त हो जाएंगे तो शैतान को उसकी जेल से रिहा कर दिया जाएगा और वह धरती के 4 कोनों में राष्ट्रों को धोखा देने के लिए, उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाएगा। संख्या में वे समुद्र तट की रेत की तरह हैं। वे धरती की चौड़ाई में गया और परमेश्वर के लोगों के शिविर को घेर लिया, वह शहर जिसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:7-9। 1000 साल के अंत में दूसरे पुनर्स्थान में दुष्कर्मियों को पुनर्स्थित किया जाएगा। 5, जब धर्मी जन पवित्र शहर में धरती पर उतरते हैं और दुष्कर्मियों को पुनर्स्थित किया जाता है तो शैतान थोड़े समय के लिए मुक्त हो जाएगा। 3, उसके पास फिर से दुष्कर्मियों का नेतृत्व होगा और धर्मी जन उसका लक्ष्य होंगे। एक क्षण भी बर्बाद किए बिना वह तुरंत दुष्कर्मियों को एक विशाल सेना में संगठित करना शुरू कर देगा। शैतान शहर के खिलाफ मार्च करने के लिए आदेश देता है। जैसे जैसे दुष्कर्मी नए यरूशलेम के चारों ओर मोर्चा संभालते हैं, वे हमेशा के लिए खो जाने की डरावनी झलक देखते हैं। अंतिम निर्णय का दृश्य, यहाँ पहली बार समस्त मानव जाति आमने सामने मिलेगी। यीशु परमेश्वर के बचाए गए विश्वासियों धर्मी जन की अगुवाई करते हैं जो शहर के अंदर हैं। शैतान दीवारों के बाहर दुष्कर्मियों की भीड़ का नेतृत्व करता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में परमेश्वर न्याय के अंतिम चरण को पूरा करते हैं और दुष्कर्मियों को अदालत में निर्णय के दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तब मैंने एक महान सफ़ेद सिंहासन और उन्हें देखा और जो उस पर बैठे थे, और मैंने सिंहासन के सामने खड़े मृत महान और छोटे लोगों को देखा और मृतकों का निर्णय पुस्तकों में उल्लेखित कर्मों के अनुसार किया गया था। प्रकाशित वाक्य 20:11-12। जैसे ही दुष्कर्मी न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, उनका पूरा जीवन उनके सामने खोला जाता है। स्वर्ग में निहित अभिलेखों से यीशु धर्मी जन न्यायाधीश औपचारिक रूप से गिरे हुए पुरुषों महिलाओं और स्वर्गदूतों के साथ अपने व्यवहार की पूरी कहानी खोलते हैं। पूरा ब्रह्मांड तीव्र दिलचस्पी के साथ देख रहा होता है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने पर यीशु हर किसी को अपने मुक्तिदाता के काम का व्यापक दृष्टिकोण देते हैं। वह बताते हैं कि वह खोए हुए लोगों को तलाशने व बचाने के लिए आए थे। हम पढ़ते हैं रोमियो 4:10-11, हम सब परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे। यह लिखा है, प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जीव परमेश्वर को स्वीकार करेगी। रोमियो 14:10-11। मसीह यीशु मृत्यु के लिए आज्ञाकारी बन गए, यहाँ तक कि सूली पर मृत्यु के लिए भी। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के नाम पर हर घुटने को स्वर्ग और पृथ्वी पर झुकना चाहिए और हर जीव स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। यह हम फिलिपियों 2:5-11 में पढ़ते हैं। पाप अपने अंतिम अंत से मिलता है। भले ही शैतान और भारी संख्या में दुष्ट लोग मानते हैं कि परमेश्वर का रास्ता सही है, उनके दिल नहीं बदलते हैं। उनका चरित्र पापमय रहता है और निर्णय के बाद दुष्कर्मी धरती के चौड़ाई में चले गए और परमेश्वर के लोगों के शिविर को घेर लिया। वह शहर जिसे वे प्रेम करते हैं, लेकिन आग स्वर्ग से नीचे उतर आई और उन्हें खा गई। और शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया, जलती हुई गंधक की झील में फेंक दिया गया। तब मृत्यु और पाताल लोक आग की झील में फेंक दिए गए। आग की झील दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया था तो उसे आग की झील में फेंक दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 20:9-15। अंतिम निर्णय में शाश्वत परमेश्वर की आग पाप को नष्ट कर देगी और उनको भी जो लोग हट करके उसे चिपके हुए हैं। पृथ्वी शुद्ध और नई बनाई जाएगी। इस अंतिम प्रलय सफाई की राख से परमेश्वर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21:1-5। तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही। मैंने पवित्र शहर नया यरूशलेम देखा, परमेश्वर के स्वर्ग से नीचे आता हुआ। अब परमेश्वर का निवास मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ रहेंगे। वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे। वह उनकी आँखों से हर आंसू मिटा देंगे। अब और मृत्यु या शोक या बिलाप या दर्द नहीं होगा। पुरानी चीजों का पुराना क्रम गुजर गया, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 21:1-5 में। हमारे पास खोज करने के लिए स्वार्थ, बीमारी और पीड़ा से मुक्त एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। विकसित करने के लिए अद्भुत संबंध है और एक अनंत काल है जिसमें यीशु के चरणों में सुनने, सीखने और प्रेम करने के लिए बैठना है। आपने उस दिन कहाँ पर होने की योजना बनाई है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपको क्या दिया है। अगर आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में देते हैं तो आप शहर के अंदर मसीह और बचाए हुए लोगों के साथ हो सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो अब अपना हृदय यीशु को दे दें और वह आपको अपने प्रेम और क्षमा से घेर लेंगे। यह आपका मौका है, यह आपके उद्धार का दिन है। आइए यह मौका का सही उपयोग करें। हम निर्णय लें कि हम यीशु और उसके धर्मी जन के संग शहर के अंदर होने वाले लोगों के संग रहें, या यह नहीं कि हम शैतान और दुष्ट लोगों के संग शहर के बाहर हों। ऐसा हमारे परिस्थिति ना हो। इसके लिए हम परमेश्वर की अगुवाई मांगे और उसकी मदद मांगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता, हमें तू स्वीकार कर, हमें तू बचा ले। हम प्रभु यीशु मसीह और उसके योजना को हम स्वीकार करते हैं। हमें धर्मी जनों के संग उस झुंड में होने के लिए तू हमें अगुवाई कर। तेरा आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चला, हमारे जीवन को बदल दे कि हम तेरे संग रहे और तेरे संग हमेशा के लिए रहे। पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर और हमें स्वीकार कर और तेरे स्वर्ग राज के लिए तैयार कर, हमें तेरे पवित्र आत्मा का वरदान दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।